23 नंबर के रजिस्टर में 47 केस पर करके रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते समझाने वाला रूहानी बाप और समझने वाले रूहानी बच्चे बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है क्योंकि बाप भी रूहों की दुनिया का है और बच्चे भी रूहानी है तो बुद्धि में है कहाँ जाना है अब रूहों की दुनिया में जाना पड़े बच्चों की बुद्धि में नहीं रहता क्यों क्योंकि भक्त देह की पूजा करते और अपने को भी देह समझते तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है अनलिमिटेड स्टेज है इस पुराने मांडवे को छोड़कर घर जाने का आप पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती है पवित्र जरूर बनना है अब इस खेल का अंत अपरम अपार सुखों की जब अब पिछाड़ी है इस समय ये सब माया का पंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं कितने महल मानिया मोटरें आदि हैं इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है अल्पकाल के लिए सुख है यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार इतने ढेर मनुष्य हैं पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था अब तो मांडवा फुल भर गया अब ये चक्र पूरा पूरा होता है सत्तमो प्रधान है सत्य भी तमो प्रधान है अब फिर सत्तु प्रधान होगी सारी सृष्टि नहीं चाहिए नई तो पुरानी पुरानी सो नई ये तो अनगन तो बाहर चलता आया अनादि खेल है कब शुरू हुआ ये तो कह ही नहीं सकते अनादि चलता ही रहता है ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है क्योंकि सब नास्तिक है तुम भी इस ज्ञान को मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे देवताएं ही नहीं जानती थी सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम की ब्राह्मण ही जानते हो फिर ये ज्ञान तायहलोप हो जाएगा बाप ने सुखदाम का मालिक बनाया बाकी और क्या चाहिए बाप से जो पाना था वो पा लिया बाकी कुछ पाने के लिए रहा नहीं तो बाप पूछते हैं तुम ही सबसे जाति पति तो बने हो पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने और तुमको ही पहले जाना पड़ेगा ये चक्र है ना पहले पहले मारा में माला में पिरोएंगे कौन सी माला ये रुद्र माला है ना रुद्र की माला की यादगार रुद्राक्ष के मण के जिनमें मुख बने होते
अर्थात परमात्मा बाप ने नई शक्ति रचने के लिए जिन बच्चों का मुख लिया धागे में सारी दुनिया के मनुष्य फिर हुए हैं। धागे से निकल परमधाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में फिर जाएंगे। ये बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो, ये है वेद की माला। जिसमें सब मण को मिसल के रोए हुए हैं, रुद्रमाला और विष्णुमाला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है, क्यों प्रजापिता ब्रह्मा से विष्णुमाला कैसे बनती है, कितने टाइम में बनती है? अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड। इसका मतलब प्रजापिता ब्रह्मा लाख सेकेंड में जाकर विष्णु बनता है। उसके पहले का जो पीरियड है वो अप एंड डाउन का। तो ब्राह्मण जब तक अप एंड डाउन में आते हैं तब तक विष्णु की माला नहीं है, रुद्र की माला भी नहीं, क्योंकि प्रजापिता है पतित और पतित में आता कौन है? पावन एवर प्योर। तो दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पतित पावन। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी माला नहीं होती है। माला मन संगठन यूनिटी यूनिटी प्योरिटी के बगैर नहीं होती। संपूर्ण ब्राह्मण तो कहेंगे प्योरिटी, संपूर्ण ब्राह्मण तो देवता, तो संगठन भी होगा, यूनिटी भी होगी। अभी तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुम चढ़ते हो गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है। इसलिए रुद्र माला तो विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा भी सिजरा है, ब्राह्मणों का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला जरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनती है, कल फिर माया थप्पड़ मार कर कला काया ही निकाल देती की कमाई कट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। विचार करो कहाँ से गिरते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी कीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। अगर हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी तो सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये पांच विकार आधा कल्प के दुश्मन, وہ بھی چھوڑ کے نہیں ہے, سب چلاتے ہیں, کروڈ کرنا پڑتا ہے, پرنتو درکار کیوں پڑی ہے, پیار سے کام ہو سکتا ہے؟ چور کو بھی پیار سے اگر سمجھائیں گے تو وہ جھٹ سب کہہ دے گا. باپ کہتے ہیں میں پیار کا ساگر ہوں نا, تو بچوں کو بھی پیار سے کام لینا ہے. بل کوئی بھی پوزیشن ہو, بابا کے پاس ملٹری والے بھی آتے ہیں, ان کو بھی بابا سمجھاتے ہیں تم سورگ میں جانا چاہتے ہو تو صرف شیو بابا کو یاد کرو. انہیں کہا جاتا ہے تم یدھ کے میدان میں مریں گے تو سورگ میں جائیں گے. واسطو میں یدھ کا میدان یہ ہے. کون سا یدھ کا اکھاڑا ہے؟ مایا کا یدھ. وہ تو لڑائی کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اور یہاں تو جیتے جی مرنا ہے. ان کا استھول یدھ ہے اور استھول مرنا ہے. وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کر کے جنم لیتے ہیں, اور یہاں جیتے جی مر جاتے ہیں تو باپ کے پاس جنم لیتے ہیں. وہ مرتے ہیں تو سنسکار لے جاتے ہیں لڑائی کے, پرنتو وہ سورگ میں تو جا نہیں سکتے. اور تم تو جیتے جی سورگ میں جاتے دوسرا دیکھ. تو بابا ان ملٹری والوں کو سمجھاتے تھے کہ شیو بابا کو یاد کرنے سے تم سورگ میں جا سکتے ہو, کیونکہ سورگ کی استھاپنا ہو رہی ہے. شیو بابا کی یاد سے ہی بھی کرم وناش ہوں گے. یہ تھوڑا بھی جان ملا نا تو اوناشی جان کا وناش نہیں ہوتا ہے. یہ میلا آدھی کرتے ہو تو کتنی پرجا بنتی ہے؟ تم روحانی سینا ہو نا, اس میں کمانڈر میجر آدھے تھوڑے ہوتے, اور پرجا تو بہت بنتی ہے. جو اچھی ریتے سمجھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھا پد پاتے ہیں. ان سمجھنے والوں میں بھی فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, تھرڈ گریڈ ہوتی ہے. تم سکھا دیتے رہتے, کوئی تو بالکل آپ سمان بن جاتے ہیں, کوئی تم سب سے بھی اوپر جا نہیں سکتے. دیکھا جاتا ہے ایک دو سے اوپر چلے بھی جاتے ہیں, نئے نئے پرانوں سے پیچھے چلے جاتے ہیں. باپ سے پورا یوگ لگ جائے تو بہت اونچا چلا جائے. پورا یوگ من بدھی یوگ پھر اور کہیں نہ بٹکے. سارا ہی بدھی یوگ باپ میں چلا جائے تو بہت اونچا پد پا لے گا. سارا مدار ہے یوگ پر. نالج تو بہت سہج ہے, تم فیل کرتے ہوں گے. باپ کی یاد میں بگھن پڑتے ہیں. باپ کہتے بھوجن کھاؤ تو بھی یاد میں کھاؤ, پرنتو کوئی کوئی منٹ, کوئی دو منٹ, کوئی پانچ منٹ یاد میں رہتے ہیں. کب بھوجن کھاتے سمے, باقی بھوگ بھوگنے میں لگ جاتے. منٹ دو منٹ یاد میں رہتے اور باقی भोजन में बुद्धि चली जाती, सारा समय याद में रहे। कौन सा सारा समय? जो इंद्रियों से भोग भोगा उस समय सारा समय याद में रहे, बड़ा मुश्किल। माया कहां न कहां उड़ा देगी। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मा की अवस्था होगी। सिवाय बाप के अगर कुछ भी अपना होगा तो याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, ये बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है? सिर्फ तुम बच्चे याद आते हो। तुम तो जरूर बाप की याद में पड़े रहेंगे, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरह की जाती है, और फूल अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बिगर खुशबू भी होते हैं, बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो, सारी दुनिया जंगली जानवरों में चल है, कितना क्रोध में आकर के लड़ते झगड़ते। सन्यासियों में भी क्रोध बहुत होता है, थोड़ा ही थोड़ी ही बोलो उनसे तो बिगड़ पड़ते हैं, बहुत देर हुआ। बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना होता है। धर्मशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता है, ईश्वरीय मत वाली एक होती है, ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत। दैवी मत एक ईश्वर ही आकर के बनाते, राजयोग की नाली देते हैं, फिर ये नालिज गुम हो जाएगा। राजाओं का राजा बन गया, फिर नालिज क्या करेंगे? नालिज कब तक लेंगे? जब तक राजा ही नहीं मिले। इक्कीस जन्म तो प्रारब्ध भोगते राजाई की, वहां न ज्ञान लेते हैं और न ज्ञान देते। वहां ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सत्युग में गए हो, ये चित्र फिरता रहता है, सत्युग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप कर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमको, सबसे तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। मन सबसे जास्ती मन किससे जास्ती है? और दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं भारत की, उन आत्माओं के मुकाबले तुम भारतवासी बच्चों ने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। क्योंकि जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले गए, उनके वो भक्ति के संस्कार तो खलास हो गए आजकल के। तो अब एक बाप को याद करो तो फिर तुम सत्योपदान बन जाएंगे, इसमें मेहनत है, इस बात में बाप को याद करना और एक बाप को याद करना ज्यादा मेहनत किसमें? बाप को याद किया, दूसरों को भी याद किया तो कोई खास मेहनत नहीं, लेकिन सिर्फ बाप ही याद आए और कोई याद ना आए इसमें नहीं। रचना के आदि मध्यंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, तो भगवान किसके तन में आया? ब्रह्मा के तन में आया। तो अंजाम क्या होना चाहिए? भगवान भगवती बनने चाहिए। परंतु देहदारी को भगवान भगवती कहना राम है क्या? भगवान भगवती जो बनेंगे तो देहधारी होंगे क्या? कि निराकारी स्टेज वाले होंगे? ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? क्या बात, ब्रह्मा विष्णु के साथ शिव को क्यों मिला दिया? ब्रह्मा विष्णु के साथ कौन सी मूर्ति होनी चाहिए? शंकर की मूर्ति बतानी चाहिए। शंकर की जगह शिव क्यों कह दिया है? क्योंकि शिव की सोल शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होती है संसार में, इसलिए पूछा कि ब्रह्मा विष्णु और विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। इसमें ये ब्रह्मा विष्णु बनने वाला है, वो तो विष्णु बन गया, और इसमें शिव की प्रवेशता है। विभूति की बात बता रहे हैं ना। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता
नहीं।
तुमको फरिश्ता बनना है साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ है टाटी, ये है डिटेल की बात। बाकी नेक्स्ट में तो और उनका है दगा संज्ञा, वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे नहीं सकते। कौन निवृत्ति मार्ग वाले? जो हद के संबंधियों को छोड़ देते हैं, बेसिक नॉलेज में भी हद के संबंधियों का घरघाट का त्याग करते हैं। यहाँ कोई त्याग करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो बुद्धि से छोड़ना है। तो वो हद के सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ दिया। प्रवृत्ति में रहे तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान भी दे सके, जब खुद ही प्रवृत्ति में नहीं है। प्रवृत्ति में रहकर राजयोग सीखने का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे सिखाए सकते? राजा रानी बनना तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। वहां है ही सुख और वो तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उनकी परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने पैसे दान पुण्य में लगाए, फिर पाप का धंधा किया, तो तुम पापात्मा बन गए। अब तुम फिर पुण्यात्मा बनते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। पाप आत्मा तो फिर धंधा भी पाप का ही करते हैं। धर्मशाला बनाई तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये तो है बेहद का बाप, और ये है डायरेक्ट। वहां जो दान पुण्य करते हो भक्ति मार्ग में, वो हो जाता है इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां कहते हैं सिर्फ ईश्वरार्पणम कृष्णार्पणम, क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। परंतु कोई ईश्वर डायरेक्ट आकर के लेता थोड़े ही है, मिलता किनको? गुरु को। यहाँ तो बाप डायरेक्ट आया हुआ है और वो है इनडायरेक्ट। वहां लेने वाले कौन है? वहां लेने वाले गुरु। कहते हैं ईश्वर अर्पणम कृष्ण अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को नहीं है, सत्य के कृष्ण भी कोई भूखा नहीं है और परमात्मा शिव भी कोई भूखा तो नहीं है, तो अर्पण किसको करते हैं? शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख थोड़ी ही होगी, भूख होगी क्या? तो अर्पण या समर्पण किसको करते हैं? ये भक्ति मार्ग में तो देहधारी गुरुओं को करते हैं, फिर यहाँ शिव को भी भूख नहीं होती और सत्युग का जो कृष्ण होगा उसको भी कोई भूख नहीं, वो तो पेट भरा ही रहता है देवताओं का, कोई भूखे रहते हैं क्या? तो फिर अर्पण किसको करते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसी को अर्पण होता है ना। तो डायरेक्ट बाप आया हुआ है, कृष्णार्पणम ईश्वरार्पणम कहते हैं, परंतु वहां कृष्ण या ईश्वर तो नहीं होता, और फिर भूख तो न कृष्ण को लगती न सताती और न ईश्वर को सताती। भूख किसको सताती? सत्युग में क्या भूख सताएगी? क्या परमात्मा कोई भूखा है क्या? भूखे कौन होते हैं, कहाँ होते हैं? कौन सी युग में? कलयुग में भूखे होते हैं। तो किसको अर्पण करते हैं? शिव बाबा तो दाता है, उनको तो भूख होगी नहीं। ठीक है, तो दाता नहीं है, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला तो नहीं है, है? लेने वाली आत्मा होगी या सुप्रीम सोल होगा? आत्मा लेने वाली हो सकती है, तो आत्मा एक देवे और दस पावे। गरीब गरीब जो होते हैं वो रुपया दो रुपया देते हैं तो उनको कदम मिल जाता है। सुदामा का भी मिसाल दिया जाता है, क्या उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, तो क्या दिया? چاول چپٹی ایک مٹھی نہیں دو مٹھی. تو کون سے چاول چاہیے؟ پھول چاول جو ماتائیں لے آتی ہیں پوٹلی میں باندھ کے, یہ تو بکتی نار کی بات. چاول مانا جس کا چھلکا اترا ہوا ہے اور جس کی شیپ ایسے ہے جیسے آتم. جب ٹیکا لگاتے ہیں تو مستک پر چاول لگاتے ہیں. چاول ہے آتما کی یادگار جس کا دیہ ابھیمانی کا چھلکا اترا ہوا ہو. ایسی دیہ ابھیمانی کی چھلکے اتری ہوئی آتمائیں دو پرکار کا سنگٹھن, وجے مالا اور رودر مالا. 108 وجے مالا کے اور 108 رودر مالا کے من کے 789 کا پراتھ کلاس تیسرے پیج کا آدھی سوڈاما. کوئی دوسرا نہیں ہوا. دام کہتے ہیں دھن سمپتی اور سو مانا سندر. سندر دھن سمپتی کون سی ہے, پھول یا سوکشم؟ جو دیہد کی دھن سمپتی ہے وہ یہ ہے گیان دھن. تو سدامہ کا ارتھ ہی ہوا جس کے پاس اور کچھ نہیں تھا دینے کے لیے لیکن جن کی دھن سمپتی وہ اس کے پاس تھی. جیسے سیڑھی کے چتر کے نیچے دکھایا ہے بیگر کے روپ میں بھارت پڑا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس پھول روپ میں تو پھول چیزوں کی جیسے بھکمنگا ہے دوسروں کا دیا ہوا لیتا ہے. لیکن بڑی سمپتی کون سی دکھائے گی سر کے نیچے؟ گیتا. تو وہ جان ہے سندر دھن سمپتی جو سدام نے دی. سورگ میں تو پدارتھ ہی پدارتھ ہوں گے, تو استھول پدارتھوں کی تو وہاں درکاری ہوئی. بھارت سونے کی چڑیا تھا, باپ نے کتنا دھنوان بنایا تھا. سومناتھ کے مندر میں کتنا آتی چار دھن تھا, کتنا لوٹ کر کے لے گئے. بڑے بڑے ہیرے جواہرات تھے, اب تو دیکھنے میں بھی نہیں آتے, پٹ پٹ ہو گئے. پھر اس کی ریپیٹ ہوگی, خلاص ہو گئے, کاٹ پیٹ دیے, حصے حصے کر دیے. وہاں سب خانیاں تمہارے لیے بھرپور ہو جائیں گی. ہیرے جواہرات تو وہاں ایسے ہوں گے جیسے پتھر پتھر پڑے رہتے. باپ تو اویناشی جان رتن دیتے ہیں جس سے تم اتھاہ دھنوان بن جاتے ہو. تو میٹھے میٹھے بچوں کو کتنی خوشی ہونی چاہیے, جتنا پڑھتے رہیں گے خوشی کا پارا بڑھتا رہے گا. بڑا انسان پاس کرتے ہیں تو بدھی میں رہتا ہے نا, یہ پاس کر کے پھر یہ بنیں گے, یہ کریں گے. تم بھی جانتے ہو ہم یہ دیوتا بنیں گے, یہ تو جڑ چتر ہے. ہم وہاں چیتنیہ بنیں گے. یہ چتر بھی تم نے جو بنائے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ دیوی درشٹی سے تم دیکھ آئے ہو. چتر بڑے ونڈرفل, کوئی سمجھیں گے یہ برہما نے بنائے ہیں. جن چتروں پر جان کی سمجھانی دی جانی ہے وہ چتر نہ برہما نے بنائے ہیں نہ برہما کمار کماریوں نے بنائے ہیں. جن چتروں کی سمجھانی سے نئی دنیا کی استھاپنا ہونی ہے وہ کس نے بنوائے؟ شیو بابا نے ساکشاتکار سے دیو درشٹی سے تیار کرائے. اگر یہ کوئی سے سیکھا ہوتا تو صرف ایک تھوڑے ہی سیکھا ہوتا, اور بھی سیکھے ہوئے ہوتے نا. یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی سیکھا ہوا نہیں, یہ تو باپ نے دیوی درشٹی دوارا بنوائے ہیں. کیا یہ چتر ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए, कोई मनुष्य मत पर, ब्रह्मा की मत पर या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मत पर नहीं बने हुए। कौन से चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, धार, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, ये चार पांच चित्र श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं है। श्रीमत से बनाए हुए चित्रों से सदगति होगी और मनुष्य मत पर बनाए हुए चित्रों से दुर्गति होगी, क्योंकि अनेक तरफ बुद्धि चली जाएगी। हाँ, ये सब खलास हो जाएंगे, न मनुष्यों के बनाए हुए चित्र रहेंगे और न परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं वो रहेंगे। कौन से रहेंगे? कैसे नहीं चित्र रहेगा? इन जड़ चित्रों का कुछ भी नाम निशान नहीं रहे। अब इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये सब नहीं रहेगी। क्या था? भक्ति में सामग्री का विस्तार हो जाता है और ज्ञान में सामग्री कुछ नहीं। कोई लिटरेचर विटरेचर छपाने की दरकार नहीं। जब वारसदार क्वालिटी की ही आत्माएं निकालनी है तो लिटरेचर छपाने की क्या दरकार? जो वारसदार क्वालिटी की आत्माएं होंगी उनके बोलने मात्र से ही क्या होगा? ढेर सारी आत्माओं को आकर्षण हो जाएगा। तो क्या लिटरेचर से सारी दुनिया को आकर्षण होगा? तो ऐसी पावरफुल आत्माएं होंगी जो बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो उनके पीछे खुद ही खींचे चले आएंगे। तो भक्ति मार्ग में होता है विस्तार और ज्ञान मार्ग में होता है सार। तो ये भक्ति की विस्तार की सामग्री नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने तुमको हराया। जीत किसने पहनाई? जीत पहनाने वाला दिखाया गया और उससे निकली हुई है जंजीरें और उन जंजीरों में सब फंसे हुए हैं। रावण है सबसे पुराना दुश्मन और तो सब नए नए। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष पहले कौन सी आत्मा आती है? परम राम जी, अब्राहिम है तो रावण हो गया। लेकिन वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है परम धाम से, बाप के घर से। सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधान होगी, सतो प्रधान कर्म करेगी या तमो प्रधान कर्म करेगी? तो उसको रावण कहेंगे। और रावण की मान्यता और रावण जलाया जाता है भारतवर्ष में या विदेश में? विदेशी लोग तो रावण को मानते भी नहीं। तो कहाँ की बात हुई? जरूर संगम युग के ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। उन ब्राह्मणों में से कोई ऐसा ब्राह्मण है जो द्वापर युग के शुरू होते ही तमो प्रधान बन जाता है? पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण शाम की बुद्धि हो जाता है और उस शाम की बुद्धि में सतो प्रधान इब्राहिम की आत्मा सतो प्रधान स्टेज में प्रवेश करती है। तो ऊपर से आने वाली आत्मा को कोई रावण नहीं कहेंगे। वो जिसने प्रवेश करता है वो भारत की ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं जो रावण का रूप बनती है। जिनने प्रवेश किया वो इस्लाम धर्म की हो गई माता, जैसे ब्रह्मा हो गई माता देवी देवता सनातन धर्म के और शिव बाबा हुआ पिता, ऐसे ही इब्राहिम हुआ पिता और उसने जिसने प्रवेश किया वो हो गई उस धर्म की माता और उस माता को भी जन्म देने वाला कोई पिता होगा। तो उस उस शरीरधारी को जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है उसको भी तो कोई जन्म देने वाला होगा, जो उसको जन्म देने वाला होता है आधार को, वो हुआ रावण का पुरुष रूप और वो हो गई स्त्री रूप, आधार मूल जड़ रूप। ये जाय के चित्र में जड़ों में बैठे हुए दिखाए गए हैं, उनमें से एक मुख्य जड़ है बाई ओर इब्राहिम, और उस जड़ को जन्म देने वाला कोई बीज भी है। तो ये सबसे पुराना दुश्मन है, ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में भी ये सबसे पुराने दुश्मन है, ये यज्ञ आदि काल से ही है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विराट ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो तुम कंस्ट्रक्शन करने वाले हो या डिस्ट्रक्शन करने वाले हो, तुम हो कंस्ट्रक्शन करने वाले, डिस्ट्रक्शन करने वाले तुम नहीं हो। तो जो विनाश वाला प्रज्वलित हुई यज्ञ के आदि में, उसका कारण कौन बने? वही पुराने दुश्मन। यज्ञ के आदि में जब स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई, तो माता पिता के बीच में कोई ऐसे बच्चे आसुरी घुस पड़े जिन्होंने दोनों में फूट डलवाई दी। उनकी वाणी में क्या बताया, प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में होता है दोनों की मान्यता, माता पिता, और निवृत्ति मार्ग में एक बाप को मानेंगे और माता को नहीं मानते। विदेशी धर्म जितने भी हैं उनमें गॉड मदर को नहीं मानते, और भारत में गॉड मदर को भी मानते हैं और गॉड फादर को भी मानते हैं, क्योंकि यह है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। तो कोई ऐसे बच्चे यज्ञ के अंदर घुस पड़े जिन्होंने माता पिता में फिक्शन डलवा दिया, वो हुए रावण संप्रदाय के बच्चे, उनका भी कोई मुखिया होगा आदि से ही। तो ये है तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। दुनिया में जितने भी दूसरे धर्म हैं उनमें सबसे जाति लंबे समय तक राज्य किसका चलता है? मुसलमान तो बीच में आए, मोहम्मद से मुसलमान हुए, उससे पहले कोई मुसलमान थोड़े। इस्लाम, हाँ इस्लाम का ही परिवर्तित रूप है मुसलमान, तो पुराने कौन हुए? इस्लामी। तो इस्लामियों ने 2500 वर्ष की सृष्टि पर राज्य किया है। ये तो क्रिश्चियन सभी हुए हैं, 100-200 वर्ष से दुनिया में फैल गए सारी दुनिया में, इनका राज्य तो अभी हुआ है। लेकिन वैसे दुनिया में चारों तरफ फैलाव किसका रहा? इस्लामी हुआ। तो आधा कल्प इनका राज्य चलता है। इनका व्यभिचारी धर्म का आज भी अरबियंस भारत में आकर के कन्याओं को, गरीब कन्याओं को खरीद खरीद करके ले जाते हैं। उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक शादियां करो, खूब जनरेशन बढ़ाओ। तो आधा कल्प है व्यभिचारी राज्य और आधा कल्प चलता है आप व्यभिचारी राज्य राम राज्य। राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण, रावण बिल्कुल उल्टा। तो आधा कल्प रावण राज्य को हुए, लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं निकलता है। तो कितना फर्क है, तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु हुई 5000 वर्ष की, 84 लाख योनियां तो नहीं है मनुष्य की। ऐसे 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रंग मान लेंगे तो सब फॉलोअर हमको छोड़ देंगे, उनका लगाव किस में लगा हुआ है? अपने फॉलोअर्स में लगाव लगा हुआ है, परमात्मा की ओर बुद्धि नहीं है। अगर उनके सब फॉलोअर्स उनको छोड़ दें तो अभी अभी रिवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल रहे, अपनी राजनीति छोड़ेगी क्या? अभी नहीं छोड़ेगी, सिखाई में कुछ समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे, कौन ज्ञान लेंगे बाबा से? ना जो गरीब होंगे वही बाबा से आकर ज्ञान लेंगे, पहले पहले गरीबों के लिए परमात्मा से प्राप्ति होती है और फिर होती है साहूकारों को लास्ट में, और सन्यासियों को वो है ज्ञान धन के साहूकार, उनको ज्ञान धन का नशा रहता है, अहंकार रहता है, तो न ज्ञान धन के अहंकार वालों को परमात्मा बाप मिलता है उससे प्राप्ति होती है, और न स्थूल धन वाले साहूकारों को परमात्मा बाप से प्राप्ति होती है। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, और ज्ञान धन के साहूकार वो भी मारे अहंकार के कभी सरेंडर सर नहीं झुकाएंगे, सर अंडर नहीं करेंगे, हाँ माथा नहीं झुकाएंगे कि हम हमारी बात गलत तुम्हारी बात सही, अंदर से समझेंगे कि इनकी बात सच्ची है, लेकिन मारे अहंकार के माथा झुका नहीं सकते, सर अंडर नहीं होंगे। ये पहचान है सन्यासियों की, बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना भर करके देना पड़े क्या? साहूकारों के तो करोड़ों की मिल्कियत है, साहूकारों की करोड़ों की मिल्कियत यज्ञ में आ जाएगी तो बाबा को भर के नहीं देनी पड़ेगी, लेता कौन है, खाता कौन है? सिर्फ ज्योतिबिंदु खाता है या वो जिसमें प्रवेश करता है वो लेता और खाता है, निमित्त कौन बनता है? साकार निमित्त बनता है ना, लेने के और खाने के और भोगने के, तो जो लेगा उसको भरकर नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं कि जो भी मैं लेता हूँ वो इस जन्म में ही तुम्हारा वापस भी कर दूंगा और 21 जन्मों का ब्याज भी दूंगा सर। बाबा कुछ किसी से लेते नहीं है, यहाँ का यहाँ जो जितने दिया वो उसका वापस भी करेंगे और साथ साथ 21 जन्मों के लिए भी देंगे। इतनी बड़ी बैंक ब्याज देने वाली और दुनिया में कोई हो नहीं सकती, तो बाबा साहूकारों का नहीं लेते हैं, इसलिए कि उनको तो फिर बहुत भर के देना पड़ेगा, इसलिए गरीबों का लेते हैं। तो साहूकार तो मुश्किल से ही इस ज्ञान में उठते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। सब कुछ माने क्या? धन पद मान मतदा सब कुछ भूलना पड़ता है, कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। क्या जिनके पास तन अगर कुछ बाकी रह गया है, गोरे चिट्ठे हैं लंबे चौड़े हैं हमारा तन है, ऐसे अहंकार वालों को कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, ऐसे धन धन है तो धन याद आएगा, जिसको तन है तो तन याद आएगा, और अगर किसी के पास बड़े परिवार की संपत्ति है, जनबल है तो जनबल याद आएगा। जैसे नेताओं को अपने फॉलोअर याद आते हैं कि हमारे तो इतने वोटर्स हैं, तो ऐसों की कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। जो जिसके पास जिस बात का अहंकार होगा वो चीज उसको याद जरूर आएगी। तो साहूकार लोग तो नहीं भूल सकेंगे, कौन भूल सकेंगे? तन मन धन समय संपत्ति ही जितनी भी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े साहूकारों को तो टाइम ही नहीं मिलता, बड़े बड़े सन्यासियों को भी टाइम ही नहीं मिलता, तो कौन भूल सकेंगे? जो गरीब होंगे वो ही भूल सकेंगे, क्यों? उनके पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आवेगा। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो ही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों पति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन। करते हैं प्रवेश करते हैं, लेकिन शिव बाबा जो प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं स्थापना का, वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की या जिसने पहले प्रवेश किया उसके द्वारा स्थापना की? नहीं, ब्रह्मा के द्वारा सारा कार्य हुआ ना, तो आधार कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ ना। तो उसी तरह वो जो धर्म पिताएं आते हैं वो हाँ वो तो अपने धर्म के आधार में प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं। उसको जो जन्म देने वाला है आधार को ना, हाँ किसकी चीज इब्राहिम कोई फीमेल था क्या? क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक, ये कोई फीमेल चोले थे क्या? नहीं, मेल थे।
आधार वाला
भले आधार है लेकिन मेल चोले हैं, लेकिन उन्होंने कार्य जो किया है माता का कार्य किया, जैसे ब्रह्मा ने माता का कार्य किया। नहीं, कुमारिका तो इस जन्म में कुमारिका इसी चोला है। अगर कुमारिका ने विशेष पार्ट बजाया ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो वहां भी वो राजा बनेगी। अगर कुमारिका विश्व किशोर के ऊपर हावी होकर के रही तो कुमारिका ही राजा बनेगी, विश्व किशोर को रानी बनना पड़े, लेकिन नारायण बनना पड़े।
ये किचन में तो
कहा ना स्थापना के साथ साथ विनाश, यज्ञ कुंड के विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने में निमित्त कौन बने? बच्चे ऐसे कोई आए होंगे ना कि पुराने दुश्मन होंगे, उन्होंने भी शुरुआत कर दी अपने काम की,
फिर द्वापर से पहले आ गया ना।
ये मतलब नहीं है, बीज जो पड़ता है वो एक साथ पड़ता है, बीज पड़ता है सरक का बीज पड़ा तो साथ साथ सरक का भी बीज पड़ गया, क्योंकि परमात्मा शिव उसमें तो कोई कलुष नहीं है, परमात्मा शिव तो एवर प्योर है ना, लेकिन वो जिसमें आता है, किसमें आता है? प्रजापिता में आता है और ब्रह्मा में आता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा निष्कलुष है क्या? तो उनका उनका लगाव भी कहीं लगा होता है, बाप और माँ का कहीं लगाव होता है या नहीं होता है? कहाँ होता है? बच्चों बाप का लगाव जो अच्छे बच्चे में होगा जो दुकान संभाले, और माँ का लगाव जो बिल्कुल कमजोर बच्चा होगा उस बच्चे की तरह माँ बहुत ज्यादा अपना जी जान लगा देगी, बस यही कमजोरी हो जाती।
तो फिर वो ब्रह्मा माँ के समय शरीर भी छोड़ दिया, तो शूटिंग पीरियड में कहा
कितने छोड़ दिया शरीर, जितने छोड़ने से 67 में शरीर छोड़ा है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से एक साल पहले।
शूटिंग में कैसे
शूटिंग तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही शूटिंग शुरू हो गई। यह था राजा कथा प्रजा, ये भी मैं कंट्रोलर कौन थी, मम्मा या बाबा?
मम्मा
कंट्रोलर थी। तो मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा तो यह था राजा कथा प्रजा बदली हो गई। कंट्रोलर कौन बना मम्मा की जगह? मम्मा तो थी ज्ञान की देवी और पवित्रता की भी देवी, लेकिन मम्मा का स्थान जो लेगी वो उतनी पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जगदम्बा सरस्वती उसको टाइटल दिया हुआ है। किसने? शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जगदम्बा सरस्वती टाइटल दिया है उमरादे को, तो क्या झूठ हो जाएगा? नहीं, तो वो जैसा श्रेष्ठ पाठ बजाया है यज्ञ के अंदर, शासन करने का, राजाई करने का, कंट्रोल करने का, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और किसी शक्ति की नहीं हो सकती थी। तो वो हुआ बाबा तो रहा जीत, लेकिन बाबा के साथ सहयोगिनी शक्ति के रूप में कंट्रोलर के रूप में कौन बैठ गया? मुरली नहीं बोल दिया? इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खात्री होती है कुमार का, मुरली में ये बाकी बोल दिया। फिर दूसरी मुरली बोल दिया जिनका बहुत मान मर्तबा है इस दुनिया में, वो समझ लो ना, वो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी। माने इस दुनिया का मान मर्तबा हम ब्राह्मणों को लेना है? नहीं लेना चाहिए। अगर हमें कोई दे भी तो भी हम मान मर्तबा नहीं लेंगे। जैसे मान मर्तबा कोई हमको दे मुख्य प्रशासक का, सह प्रशासक, मुख्य प्रशासक, तो यहाँ ब्राह्मण शासन करने के लिए बैठे हैं क्या? कि सेवा करने के लिए बैठे हैं? सेवा करने के लिए बैठे तो इतनी बुद्धि नहीं चलती कि जहाँ सेवा करना है वहाँ राजाई बना के बैठेंगे। बाबा कहते मुरलियों में यहाँ जितनी राजाई भोग लोगे उतनी वहाँ राजाई कम हो जाएगी, सच हो जाएगी, तो वहाँ दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ मैंने कहा सचिव के सेकंड जन्म में तो कुमार का और विश्व किशोर दोनों ही राजा रानी बनेगी, महाराजा महारानी बनेगी। हाँ, संगमनिधि विश्व में उनका उतना पदमान मर्तबा नहीं रहेगा। जो संगमनिधि स्वर्ग होगा उसमें उनको दास दासी के रूप में काम करना पड़ेगा। अब ये है कि कोई फर्स्ट क्लास दासी होती है और कोई तो कोई सेकंड क्लास थर्ड क्लास दास दासी होती है। बाबा ने क्या किया?
शिवा
ब्रह्मा में आती थी।
विश्व किशोर को आगे किसने किया?
विश्व किशोर को आगे किसने किया? अम्मा ने?
नहीं तो शिवा तो क्या होती?
ये तो अम्मा की बात है जिसके शिव बाबा तो आते हैं, लेकिन शिव बाबा हर कार्य के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कोई लगाम थोड़े दे देते हैं कि तुम ये पुरुषार्थ करो या न करो। पुरुषार्थ तो हर एक का अपने हाथ में है, अपना पुरुषार्थ किसी को निमित्त बनाना किसी को निमित्त न बनाना ये तो उनके अपने हाथ की बात। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण की राशि जो है क्रैश से मिलाई जाती है, किसी से लिए बाबा ने मुरली बोला हुआ, कुत्ते बहुत पालते हैं, बिल्लियां भी पालते हैं। मैंने कुत्ता हो गया कामी और बिल्ली माया बिल्ली की यादगार होगी, तो अगर पाल लिया तो क्या बुरा, क्योंकि कृष्ण और प्रायश्चित की राशि तो मिलती।
प्रायश्चित तो स्वर्ग में नहीं जाता ना, कृष्ण तो स्वर्ग में जाता।
कृष्ण स्वर्ग में जाता है, लेकिन कौन से स्वर्ग में जाता है? अव्वल नंबर स्वर्ग में या द्वंद नंबर नंबर दो के स्वर्ग में? उतरती कला के स्वर्ग में जाता है या चढ़ती कला के स्वर्ग में जाता है? अब एक बात तो पूरी हो ले लो, कुछ हाँ हाँ ना तो क्या करो हाँ एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा सतयुग लेकिन लेकिन उसमें संगम युग का जो 21 जन्मों में से पहले जन्म की प्रारब्ध है वो उस समय समाप्त हो जाएगी जो परमात्मा बाप से प्राप्त होती है। 2036 के बाद जो प्रारब्ध प्राप्त होगी वो डायरेक्ट परमात्मा बाप से प्राप्त होगी या परमात्मा का जो स्थान लिया है जिसने उससे प्राप्त होगी देवता से प्राप्त होगी या ईश्वर से प्राप्त होगी तो देवता से प्राप्त हुई प्राप्ति और डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्त हुई प्राप्ति दोनों में अंतर होगा या नहीं तो इसीलिए अंतर पड़ गया। डायरेक्ट बाप से जो प्राप्त करते हैं बच्चे वो तो बहुत ही भाग्यशाली
है। पूरा
कहेंगे लेकिन संगम भी स्वर्ग
एक दो लाख सजा देंगे तो उनको टाइटल मिल जाएगा
नारायण तो धर्म का जो आधारभूत नारायण बनने वाली आत्मा होगी जिसने सबसे जाती लिटरेचर छपाई के बांटा होगा लिटरेचर की जरूरत होगी क्योंकि लिटरेचर से प्रजा निकलती है लेकिन वारसदार कोई नहीं निकलता वारसदार तो इंडिविजुअल सेवा करने से निकलते हैं तो उसने कोई वारसदार नहीं बनाया हमारे अहंकार के
लिटरेचर सुनकर के बहुत आए
बहुत आए हैं तो बहुत प्रजा बनती है आठवें नारायण की सबसे जास्ती प्रजा होनी चाहिए नहीं
एडवांस नॉलेज
तो एडवांस नॉलेज है लेने वाले भी लिटरेचर पढ़ करके निकलेंगे ना तो एडवांस नॉलेज में क्या तीसरू पार्ट में नहीं होगी सबसे जास्ती आज समझ होगी
तो जो लिटरेचर छपाने वाले होंगे
ज्यादा वास्तव में अंदर एक ये भावना होती है कि हम ऐसा लिटरेचर लिखे कि हमारा खूब नाम वाला हो हम भी कुछ करके लिखा है
जो लिटरेचर
करके
आएगा
बनेगा उस समय तो प्रभावित हो ही गया अगर लिटरेचर से ही उसने समझा ज्ञान की बातों को तो उस समय तो प्रभावित हो ही गया फिर बाद में परमात्मा बाप के संपर्क में आ जाए संबंध में आ जाए और फिर उससे प्रभावित हो जाए और लिटरेचर पढ़ना छोड़ दे फिर बाप की प्रजा बन
जाए
बाप के वारसदार भी हैं बाप की प्रजा भी बनती है बाप के भक्त भी बनते हैं कौन से बाप के अद्वैतवाणी में बोला है बाप के वारसदार बच्चे भी है बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी है